इस्लामी क्रांति और समाज।
श्रोताओं, कार्यक्रम इस्लामी क्रांति और समाज की एक अन्य कड़ी के साथ आपकी सेवा में उपस्थित है कायम रिजवी और मरियम मेहरदादी का सलाम स्वीकार कीजिए। कार्यक्रम में अमेरिका की कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर निकी आर कैडी पर इस्लामी क्रांति के प्रभाव के बारे में चर्चा करेंगे।
निकी आर कैडी कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी सहित अनेक यूनिवर्सिटियों में ईरान और पश्चिम एशिया का इतिहास पढ़ाती हैं। उन्होंने ईरान की इस्लामी क्रांति के बारे में अनेक किताबें लिखी हैं। कैडी की किताब में जिन बिंदुओं पर ध्यान दिया गया है वो ये कि ईरान में क्या विशेषताएं हैं जिसने इस देश को क्रांतिजनक देश बना दिया है। कैडी का मानना है कि क्रांतिकारी या विद्रोही आंदोलनों की संख्या की दृष्टि से मुसलमान, हिंदू या ईसाई कोई भी देश ईरान जैसा नहीं है।
निकी कैडी ईरान की इस्लामी क्रांति के तत्वों की समीक्षा में अनेक कारणों का उल्लेख करती हैं। वास्तव में निकी कैडी कई कारणों के संयोग को ईरान में इस्लामी क्रांति के वजूद में आने में प्रभावी मानती हैं। उनका ये मानना है कि काजारी शासन काल में पश्चिम के साथ ईरान के आर्थिक एवं राजनीतिक संबंध ईरान में व्यापक स्तर पर असंतोष का कारण बने थे और ईरानियों में साम्राज्यवाद एवं पश्चिम के खिलाफ एक तरह से नफरत पैदा हो गई थी। दूसरी ओर काजारी दौर का ईरान अपनी भौगोलिक स्थिति, पारंपरिक फोर्सेस की ओर से पैदा हुई रुकावटों और काजारी शासकों के विचार के कारण विकास नहीं कर सका था। इस पिछड़ेपन की वजह से आधुनिकीकरण की भावना तेज हुई, इसीलिए पहलवी शासन काल में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया ने तेजी पकड़ी थी।
निकी कैडी उन लोगों में है जिनका मानना है कि ईरान की इस्लामी क्रांति की जड़ दो तत्वों में है, एक आर्थिक और दूसरा शाह की आधुनिकीकरण की कार्रवाई। इन तत्वों का विभिन्न सामाजिक वर्ग और गुटों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा और ये तत्व विभिन्न वर्गों व गुटों के दमन का कारण बने, जिसके नतीजे में ये आर्थिक सुधार नाकाम हुए और क्रांति प्रकट हुई। केडी इसी मान्यता के आधार पर ईरान की इस्लामिक क्रांति का धार्मिक होना मानती हैं और उनका कहना है कि पहलवी शासन काल में बड़ी रफ्तार से आधुनिकीकरण की कोशिश की वजह से व्यापक स्तर पर सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक असंतोष पैदा हुआ और यह आधुनिकीकरण जो खास तौर पर मोहम्मद रजा शाह के शासनकाल में पश्चिम पर निर्भर था, अगस्त 1953 के विद्रोह जैसे ईरान में पश्चिम की राष्ट्र विरोधी कार्रवाई सहित कुछ दूसरे कदम ईरान में साम्राज्यवाद विरोधी भावना के मजबूत होने और धार्मिक व गैर धार्मिक फोर्सेस की ओर से विरोध का कारण बने। ये साम्राज्यवाद विरोधी भावना जनता में पुराने मूल्यों अर्थात ईरानी व इस्लामी पहचान की ओर पलटने का रुझान पैदा होने का कारण बनी। दूसरी ओर कुछ ऐसे गुट जिन्हें मोहम्मद रजा शाह के आर्थिक नीतियों से नुकसान पहुंचा था, वे शहर की ओर आने और औद्योगिक कारखानों में काम करने वाले लोग थे और बड़े शहरों की सीमा पर जीवन बिता रहे थे। वे गाँव से पलायन करने वाले लोग थे जो बाद में क्रांति में शामिल हो गए। चूंकि इन ग्रामवासियों में धार्मिक आदतें थीं, सांस्कृतिक दृष्टि से अपनी पहचान खो चुके थे और आर्थिक दृष्टि से बुरी हालत में थे, क्रांति में धार्मिक धड़ों की ओर उन्मुख हुए। वे इन आधुनिक शहरी जीवन की प्रक्रिया की तुलना में धार्मिक प्रक्रियाओं के अधिक निकट थे, इसलिए इन गुटों ने क्रांति को धार्मिक रूप देने में प्रभावी रोल निभाया। कैडी की नज़र में मोहम्मद रजा शाह की ओर से लिबरल और सोशलिस्ट वर्ग के लोगों का दमन और कुछ गैर धार्मिक कदम की वजह से भी धार्मिक फोर्सेस की प्रभावशाली मौजूदगी का मार्ग प्रशस्त हुआ और विरोधी धड़े का नेतृत्व धार्मिक नेतृत्व से मिल गया। अंत में साम्राज्यवाद विरोधी भावना, शिया आस्था और इमाम खोमेनी जैसे करिश्माई नेतृत्व की भूमिका जनता के बड़े आंदोलन, शाही शासन के पतन और इस्लामी क्रांति की सफलता का कारण बनी।
निकी कैडी अपनी किताब में एक सवाल उठाती हैं कि ऐसा क्यों है कि संवैधानिक क्रांति कुछ राजनैतिक व प्रशासनिक मामलों में पश्चिमी होने का कारण बनी, लेकिन इस्लामी क्रांति पहलवी शासन में बहुत से क्षेत्रों में पश्चिमी रंग रूप में ढलने के बावजूद प्रशासनिक क्षेत्रों में धार्मिक रंग रूप में होने का कारण बनी। कैडी इस अहम सवाल के जवाब में इस बात की ओर इशारा करती हैं कि संवैधानिक क्रांति में क्रांतिकारी फोर्स ने शाही शासन के खिलाफ संघर्ष किया, जिसने विकास, आधुनिकीकरण और सुधार के क्षेत्र में बहुत काम किया था, जिसकी वजह से क्रांतिकारी फोर्स और बुद्धिजीवी वर्ग इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि कुछ पश्चिमी रीति रिवाजों का अनुसरण ही विकास व प्रगति का एकमात्र हल है। इसलिए नई फौज का गठन, संविधान और कानून में सुधार उनकी कार्यसूची में लाया गया ताकि इस तरह तानाशाही व्यवस्था की शक्ति सीमित हो, क्योंकि उनकी नज़र में देश के विकास का मुख्य दुश्मन शाही शासन व्यवस्था थी।
कैडी कहती हैं कि पहलवी शासन ने काजारी शासन के खिलाफ कदम उठाए और ईरान के पाश्चात्यकरण के लिए 50 साल काम किए, जिसके नतीजे में आधुनिकीकरण, शक्तिशाली सेना, आधुनिक अधिकार, कानून और नई शिक्षा व्यवस्था वजूद में आई। लेकिन रीति रिवाजों पर पश्चिमी रंग चढ़ने की वजह से इस्लामी आस्था और व्यापारियों के हित खतरे में पड़ गए। ऐसे में ईरान अमेरिका और इसराइल का पिट्ठू बन चुका था। यहाँ तक कि लिबरल संविधान का भी मनमानी कार्रवाई की वजह से उल्लंघन हुआ था। ईरानियों को पश्चिमी व्यवस्था और लिबरल संविधान पर विश्वास नहीं रह गया था।
पहलवी शासन की 50 साल की हुकूमत के अनुभव से उनके लिए पश्चिमी व्यवस्था का साम्राज्यवादी व अत्याचारी चेहरा और पहलवी शासन की निर्भरता साबित हो चुकी थी। इसीलिए उन्होंने ऐसे स्वदेशी हल की तलाश शुरू की जिसकी जड़ उनकी परंपराओं में निहित हो। इस स्थिति का हल ईरानियों को मूल ईरानी व इस्लामी मूल्यों की ओर पलटने में नज़र आया। वास्तव में निकी कैडी ईरान की इस्लामी क्रांति और दुनिया की अन्य बड़ी क्रांतियों के बीच अंतर को ईरान में इस्लामी क्रांति में धर्म की केंद्रीय भूमिका को मानती हैं। कैडी की नज़र में धर्म ही वो तत्व था जिसकी वजह से लोग इस्लामी क्रांति के धारे से जुड़े थे। कैडी कहती हैं कि पहलवी शासन में सभी सामाजिक संस्थाओं और विभागों के पश्चिमी रंग में रंगने के बावजूद इस्लामी क्रांति एक ऐसी गणतंत्र व्यवस्था लाई जिसका इस्लामी स्वरूप हो और उसका संविधान पूरी तरह इस्लामी कानून व शिक्षा पर आधारित हो।
निकी कैडी का मानना है कि ईरान में धर्मगुरुओं और धार्मिक संस्थाओं ने ईरान में क्रांतियों और जनविद्रोह में जनता को लाने में बहुत बड़ा रोल अदा किया कि जिसका स्रोत शिया मत और शिया आस्था थी। वे ईरान के इतिहास में राजनीतिक शक्ति में धर्मगुरुओं के रोल की अहमियत के बारे में लिखती हैं। अगर एक बड़ा मुश्तहिद ये कह दे कि सरकार की अमुक नीति बदलनी चाहिए या ये कि अमुक शासक गलत व्यवहार कर रहा है, तो उस मुश्तहिद के अनुयायी उसकी बात मानते थे, न कि केंद्रीय सरकार की बात को। शिया मत में मुश्तहिद उस धर्मगुरु को कहते हैं जो पवित्र कुरान, पैगंबर इस्लाम और उनके पवित्र परिजनों के कथन, बुद्धि और पिछले धर्मगुरुओं की सर्वसम्मति के आधार पर धार्मिक नियम प्रतिपादित करने में सक्षम हो।
निकी कैडी की ओर से धर्मगुरु और धार्मिक संस्थाओं के रोल की अहमियत पर बल दिए जाने के बावजूद उनके दृष्टिकोणों पर एक गंभीर सवाल ये उठता है कि कैडी ने एक सुव्यवस्थित मॉडल के आधार पर ईरान के धार्मिक होने की वजह शिया धार्मिक संगठन और पहलवी की विकास व आधुनिकीकरण की राजनीति के बीच पारस्परिक प्रतिक्रिया को दर्शाने की कोशिश की है। कैडी अपनी किताब में ये दर्शाने की कोशिश करती हैं कि धार्मिक नेताओं व धर्मगुरुओं ने इसीलिए पहलवी शासन के खिलाफ कदम उठाया क्योंकि उसने धार्मिक संस्था को कमज़ोर कर दिया था। ये ऐसी हालत में है कि इस्लामी क्रांति के विचारकों व समीक्षकों की नज़र में कैडी की ये समीक्षा सही नहीं है। पहली बात यह है कि धार्मिक संस्थाओं के खिलाफ नीति और धर्म गुरुओं की सांस्कृतिक, आर्थिक व न्यायिक स्थिति के कमज़ोर होने की वजह रज़ा खान यहाँ तक कि उससे पहले काजारी दौर की ओर पलटती है, जिससे धर्मगुरु अवगत थे। और ये संयोगवश नज़र आने वाली घटना नहीं थी कि इमाम खुमैनी बदला लेने के लिए धार्मिक संस्था को पहलवी शासन के खिलाफ संगठित करते।
दूसरी ये बात है कि क्रांति में धर्मगुरुओं के साथ साथ आम लोगों की व्यापक भागीदारी की वजह को संगठनात्मक प्रतिस्पर्धा के मॉडल के जरिए पेश कर जनता के आर्थिक व मूल्यों से संबंधित अन्य भावना की अनदेखी नहीं की जा सकती। तीसरी बात जो कैडी के दृष्टिकोण की काट करती है वो ये है कि जो चीज़ शिया मत और इमाम खुमैनी जैसे हस्ती के आम लोगों के बीच प्रिय होने का कारण बनी और वे उनके अनुसरण करने लगे, वे संगठनात्मक प्रतिस्पर्धा, वित्तीय स्वाधीनता या पहलवी शासन के आधुनिकीकरण की नीति के नतीजे में धर्मगुरुओं के आर्थिक हितों के खतरे में पड़ने की वजह नहीं थी, बल्कि उनका राजनीतिक दृष्टिकोण था जिसने शिया शिक्षाओं को आधार बनाकर पाश्चात्यकरण, अत्याचार, अत्याचारियों और अन्याय का डटकर मुकाबला किया।
निकी कैडी के ईरान की इस्लामी क्रांति के बारे में दृष्टिकोण पर एक और सवाल ये उठता है कि उनका मानना है कि पहलवी शासन अधर्मी और कम्युनिस्ट लोगों का दमन कर रहा था, ऐसे लोगों को अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझ रहा था और धार्मिक फोर्स की ओर से लापरवाह था, और शाही शासन की इसी लापरवाही का धार्मिक फोर्स ने फ़ायदा उठाकर अपने बल को संगठित किया और शाही शासन के मुकाबले पर ला खड़ा कर दिया। निकी ने ऐसी हालत में दावा किया है कि पहलवी शासन ने सबसे ज़्यादा इस्लामी क्रांति के संस्थापक स्वर्गीय इमाम खुमैनी पर कड़ी नज़र रखी और उन्हें लगभग 15 वर्षों तक निर्वासित जीवन के लिए देश से बाहर भेज दिया। वास्तव में पहलवी शासन ने धार्मिक फोर्स की ओर से लापरवाही नहीं बरती थी, बल्कि ईरान और ईरानी जनता पर पश्चिमी रंग चढ़ाने पर उसके आग्रह की वजह से लोग इस्लामी व ईरानी पहचान की रक्षा के लिए धर्मगुरुओं की ओर उन्मुख हुए थे, जिसके नतीजे में सन 1979 में भव्य इस्लामी क्रांति सफल हुई।